नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1450 हो गई है, हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत न तो नहीं है और न ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन युस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।